नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। उत्तर प्रदेश हॉकी ने हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत ने एक स्वर्ण के साथ राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप का समापन किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए तीरंदाजों को सम्मानित किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। स्टार्ट जब हुआ था मुकाबला तब अभिषेक 0/0 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते नजर आए हैदराबाद। ईशान किशन जैसे 79 पे खेल रहे, क्लासन 29 पे, तो अच्छी वापसी की है।
बिल्कुल, पर सनराइजर्स की जो प्रॉब्लम अभी तक इस टूर्नामेंट में रही है वो हमें सेकेंड इनिंग्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि 200 का आंकड़ा वो लगातार पार कर रहे हैं, तो उनकी बैटिंग में उस तरह से दिक्कत नहीं है। हालांकि ट्रेविस हेड और अभिषेक आज आउट हो गए, हमने देखा कि ईशान किशन ने पारी संभाली है और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर जैसे मैंने कहा बैटिंग में उनकी दिक्कत है नहीं। वो लगातार मेरे ख्याल से ये 4 में से 3 बार 200 क्रॉस कर चुके हैं। प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग में आ रही है जो सामने वाली टीम को आउट कर नहीं पा रही है, चाहे वो पंजाब हो या आरसीबी हो, 200 का बहुत ही आराम से चेस कर पा रहे हैं। तो अभी ये कितना रन बनाते हैं वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आप कितना बना लेंगे, आपने 200 पार किया तो आप 210 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 240 बनाएंगे, पर अगर आपकी गेंदबाजी ऐसी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है
जी। कोई भी टारगेट हैदराबाद अगर जो भी लगाती है बोर्ड पर, लेकिन सामने फिर वैभव सूर्यवंशी जैसे 15-वर्षीय बल्लेबाज नजर आएंगे खेलते हुए, जिन्होंने प्रतियोगिता में अभी इस मुकाबले से पहले वो जो कैप उनके ही सर पर था 200 रन उन्होंने बनाया 50 के एवरेज से, तो बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 200-300 के स्ट्राइक रेट से ऐसे खेल रहे जैसे लग रहा हो कोई वीडियो गेम चल रहा हो।
बिल्कुल, और जब आप शुरू में आते हैं और जरूरी नहीं है आपको 70-80-90 रन बनाने हैं, अगर आप 10 गेंद पे 30 रन 35 रन 40 रन बना के जा रहे हैं तो एक तरफ से मनोबल तो सामने वाली टीम का टूटता ही है, आपकी अपनी टीम के लिए आप एक इतना मजबूत शुरुआत देके जा रहे हैं कि आप जो बीच में आते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। आपने एक तो इतने सारे रन बना लिए, आप खेले सिर्फ 2 ओवर है वहां पे, 2 या 3 ओवर है, लेकिन उन 3 ओवर्स में आपने अगर 1/4 अपना टारगेट हटा दिया जो आपकी टीम का है, तो आपकी टीम को अगले 17 ओवर में सिर्फ 3/4 टारगेट पूरा करना है बाकी 10 लोगों को मिलके, तो वो मेंटली और गेम वाइज भी जो प्रेशर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बल्कि खत्म नहीं होता, दूसरी टीम पे चला जाता है वो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये रन जो निकल गए हैं, आप अगर 240 बना रहे हैं और आपको फिर 17 ओवर में आपको सामने वाली टीम को सिर्फ 180 रन बनाने हैं, तो वो आपके 40-60 रन जो एक्स्ट्रा आपके पास एडवांटेज था वो उन्होंने 3 ओवर में खत्म कर दिया आपका।
जी बिल्कुल, और बिल्कुल, और इसी तरीके की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल हो या ध्रुव जुड़ैल भी करते नजर आ रहे, इसीलिए राजस्थान जो है शीर्ष पर भी अभी काबिज है।
बिल्कुल, और ये आपने अच्छी बात बोली, क्योंकि लगातार वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, क्योंकि उनकी उम्र की वजह से इतना ज्यादा स्पॉटलाइट है कि यशस्वी जायसवाल हम ये भूल रहे हैं कि वो 23-24 साल के ही हैं, और पिछले सीजन तक वो एक यंगस्टर्स थे, उभरते हुए यंगस्टर, और वो और ध्रुव जुरेल भी उसी तरह से खेल रहे हैं, पर शायद उनके ऊपर उतना स्पॉटलाइट नहीं है, जो एक तरह से शायद अच्छी चीज है, क्योंकि अब उनको वो प्रेशर नहीं लेना है, उन्हें पता है कि कैमरे के ऊपर आने वाला प्रेशर जो है वो वैभव सूर्यवंशी पे है, वो सिर्फ अपना गेम खेलेंगे तो काम चल जाएगा। तो एक तरह से वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बाकी की टीम का जो प्रेशर है, जो स्पॉटलाइट का प्रेशर होता है, वो भी अपने ऊपर ले लिया है पूरी तरह से
जी, और इस उम्र में बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं श्रोताओं आपको बता दें कि अंक तालिका में राजस्थान पहले और हैदराबाद 7वें स्थान पर है, पंजाब दूसरे और बेंगलुरु 3रे स्थान पर है। वहीं कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। पेश है एक रिपोर्ट।
टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की ओर से फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए महज 11 ओवर में 120 रन की साझेदारी करते हुए धमाकेदार शुरुआत की। कोहली ने 38 गेंद पर 50, वहीं सॉल्ट ने 36 गेंद पर 78 रन की तेज तर्रार पारी खेली। सॉल्ट ने अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए। कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन लय जारी रखते हुए 265 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 53 रन बनाए। टिम डेविड ने नाबाद 34 जबकि जितेश शर्मा ने 10 रन का अहम योगदान दिया। बेंगलुरु ने निर्धारित ओवर में 240 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई इंडियंस की ओर से बोल्ट, हार्दिक, सेंटनर और शार्दुल ने एक एक विकेट चटकाए। 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव होने के कारण रोहित 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। रिकेल्टन ने 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए, वहीं सूर्य कुमार यादव 33 रन ही बना सके। कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुछ दमदार शॉट्स लगाकर 40 रन की किफायती पारी खेली। शेरफेन रदरफोर्ड ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 31 गेंद में नाबाद 71 रन की पारी खेली, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। आरसीबी की ओर से सुयश शर्मा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए। आरसीबी की ये इस सीजन की 3री जीत है, वहीं मुंबई इंडियंस को प्रतियोगिता में 3री हार का सामना करना पड़ा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट पर भी। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप के लिए प्राइज मनी में 10% का इजाफा किया है। आगामी महिला विश्व कप में 87,64,615 US डॉलर की प्राइज मनी दी जाएगी। विश्व कप प्रतियोगिता 12 जून से खेली जाएगी। आगामी विश्व कप में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीम शामिल है। जिस तरह का हालिया प्रदर्शन रहा है, भारत को थर्डली डिजर्व करती है टीम।
बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है। अगर आप एक वर्ल्ड स्पोर्ट बनने का सपना देखते हैं और 8 या 10 कंट्री से बाहर जाने का सपना देखते हैं, अब तो ओलंपिक्स में आ रहा है, कॉमनवेल्थ में है, तो आप अगर उस लेवल पे अपने खेल को एक वर्ल्ड स्पोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको उस तरह की चीजें भी करनी पड़ेंगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स में बराबरी होती है मेन वुमेन में। टेनिस ने कुछ साल पहले शुरू किया था कि मेन वुमेन प्राइज मनी सेम रहेगी, हालांकि उस पर लगातार डिबेट चलती रहती है। बट अगर आप जैसे मैंने कहा, अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल में ये होता है, तो अगर आप उस लेवल के का खेल अपने आप को बनाना चाहते हैं तो आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। और जब तक आप बराबरी महिला और पुरुष क्रिकेट में उस तरह से नहीं करेंगे और या प्राइज मनी को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तब तक आप नए खिलाड़ियों को नहीं जोड़ पाएंगे अपने साथ।
बात कर लेते हैं हॉकी पर। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप के डिवीजन ए में कल उत्तर प्रदेश हॉकी ने खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 5-2 से शिकस्त दी। हॉकी पंजाब ने दादर नगर हवेली तथा दमन दीव हॉकी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश हॉकी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हॉकी मध्य प्रदेश को 5-2 से हराया। मैच की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के कप्तान केतन कुशवाहा ने टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने एक फील्ड गोल करके स्कोरिंग की शुरुआत की। हॉकी मध्य प्रदेश के गाजी खान ने गोल करते हुए मैच को रोमांचक बना दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश ने जल्द ही मैच पर फिर से नियंत्रण पा लिया। नीतीश यादव ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। अली शाहरुख, राजभर प्रहलाद और चौहान राघवेंद्र सिंह ने गोल दागते हुए उत्तर प्रदेश की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। उत्तर प्रदेश हॉकी की ये खिताबी जीत पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। उन्होंने प्रतियोगिता में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पंजाब को हराकर खिताबी मुकाबला जीत लिया। अली शाहरुख इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश हॉकी के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। वहीं हॉकी पंजाब ने दादर नगर हवेली तथा दमन दीव हॉकी को कड़े मुकाबले से हराया। डिवीजन ए के मैच में दीव हॉकी को 1-0 से शिकस्त देकर पंजाब ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राजवीर सिंह ने मैच का एकमात्र गोल किया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
बात कर लेते हैं निशानेबाजी पर। स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। भारत के 7 निशानेबाज फाइनल तक पहुंचे, लेकिन प्रतियोगिता के पहले दिन केवल 10 मीटर एयर पिस्टल जोड़ी मुकेश नेलावल्ली और पलक ही गोल्ड मेडल जीत सके। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन 8 गोल्ड और कुल 13 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बैंकॉक में संपन्न विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए आज भारतीय दल को सम्मानित किया। भारत 7 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। प्रतियोगिता में 21 देशों के 113 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट 30 मार्च से 4 अप्रैल तक खेला गया था। श्री मांडविया ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रदर्शन से एशियाई खेलों में उम्मीदें बढ़ेंगी। तीरंदाजी हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, सब में भारतीय टीम अच्छा कर रही है।
बिल्कुल, और इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता था क्योंकि एक डेढ़ दो महीने में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसके 3 हफ्ते बाद एशियन गेम्स शुरू हो जाएंगे, उसके एक दो महीने बाद एशियन गेम्स हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता था पीक पे आने का। बस एक चीज है कि ऐसा ना हो कि हम इस चीज से खुश हो जाएं और इसको पीक समझ लें, क्योंकि ये अभी पीक नहीं है, ये एक प्रिपरेटरी फेज है और शुरुआत अच्छी है। पीक होगा जब एशियन गेम्स में जाके जीतेंगे मेडल, और जिस तरह से लेकिन तैयारी चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार के एशियन गेम्स और पैरा गेम्स के जो हमारे मेडल्स थे, जो टेबल था, उसको हम क्रॉस जरूर कर पाएंगे इस बारी।
जी, वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी और क्रिकेट जरूर रहेंगे, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से भी 2 को जगह दी जाएगी। भारत में 2010 के बाद पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है, तो उन्होंने क्रिकेट को और हॉकी को प्राथमिकता दी है और बाकी खेलों में से 2 खेलों को पिक किया जाएगा, तो बड़ी बात है कि 2030 में भारत मेजबानी कर रहा है।
बिल्कुल, और क्रिकेट तो खैर आता जाता रहा है, पहले शुरू में बहुत साल पहले रहा था, उसके बाद फिर वो ड्रॉप हो गया था क्योंकि उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया बाकी टीमों ने, फिर वापसी की इसने फिर से पिछली बार, और इस बार का तो खैर कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही अलग लेवल का है क्योंकि लास्ट मिनट पे ग्लासगो ने स्टेप इन किया, तो टीम इवेंट्स तो कोई भी इसमें है नहीं, तो इसीलिए क्रिकेट का होना। और जहां तक हॉकी की बात है, हॉकी हर बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा है, पर इस बार फिर इसीलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि टीम इवेंट है और टीम इवेंट्स इस बार हो नहीं रहे हैं, तो हॉकी का होना तो लाजमी था क्योंकि उसको तो कमबैक एक तरह से करना था। क्रिकेट का होना जरूर इम्पोर्टेंट है, पर अगर भारत में कुछ हो रहा है और उसमें क्रिकेट ना हो तो उसका वैसे कोई मतलब नहीं रह जाता, हम सोच भी नहीं सकते भारत को क्रिकेट के बिना, अगर भारतीय खेल इकोसिस्टम की बात करें तो अच्छी चीज है। ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप ट्रेडिशनल खेलों की बात कर रहे हैं, हालांकि जो खेल मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो 4 हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं हम चारों को उनको इंक्लूड करने की बात करें, और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन से भी बात होगी, पर अगर नहीं तो कम से कम 2 तो कोशिश करेंगे ही करेंगे, और उसमें योगासन और मलखम, खो खो, कबड्डी इंक्लूडेड है। कबड्डी के चांसेस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक एशियन गेम्स में है और काफी सालों से है और एशियन कंट्रीज में बहुत उसकी पॉपुलैरिटी है। कॉमनवेल्थ में भी बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है, पर बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे कबड्डी बहुत पॉपुलर है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, स्कॉटलैंड हो, आयरलैंड हो, तो कबड्डी का आना मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट तय है। बाकी खेलों में कौन सा आएगा ये देखना पड़ेगा, पर इंटरेस्टिंग होगा अगर ये सारे खेल इंक्लूड हो पाते हैं तो।
जी, वहीं खेल मंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 2027 में भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी भी होगी। भारत इससे पहले फॉर्मूला 1 रेस इंडियन ग्रां प्री आयोजित कर चुका है। बात कर लेते हैं शतरंज पर। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली का सामना चीन की पूर्व महिला विश्व चैंपियन झोंगी टेन से होगा। वैशाली को 12वें दौर में चीन की जिनर झू से शिकस्त मिली थी। वैशाली और जिनर 7 अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। अंतिम उम्मीद, एक ही उम्मीद बची है भारत की वैशाली से, क्योंकि पुरुष वर्ग में तो लगभग सभी खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं।
बिल्कुल, और उम्मीद काफी स्ट्रांग है वैशाली से, पर उसका आगे कैंडिडेट्स में किस तरह से होगा ये देखना होगा, क्योंकि ओपन जो कैटेगरी है उसमें हमारा कोई है नहीं, तो विमेन्स कैंडिडेट्स अगर आप जीतते हैं तो उसके बाद आगे किस तरह से होगी चीजें वो अभी थोड़ा देखना बाकी है। फीडे चेस का किस तरह से वो इस चीज को आगे टेक फॉरवर्ड करती है, पर दोनों भाई बहन जिस तरह का खेल खेलते हैं, मुझे ये इफ की जगह वेन वाली चीज होगी कि कब ये टॉप पे पहुंचेंगे।
जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि हैदराबाद ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 147 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद प्रशांत।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।